ये आकाशवाणी दिल्ली है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने संसद के बजट सत्र के पहले दिन लोकसभा में आर्थिक समीक्षा प्रस्तुत की। कल केंद्रीय बजट पेश किया जाएगा। दिल्ली सरकार ने आज उत्तरी पश्चिमी दिल्ली क्षेत्र में रिंग रोड पर सड़क के सुदृढ़ीकरण की परियोजना को मंजूरी दी। दिल्ली सरकार ने कांवड़ यात्रा की सुविधा के लिए 185 कांवड़ शिविरों की व्यवस्था की और दिल्ली नगर निगम द्वारा मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए निगम के स्कूलों और शिक्षा संस्थानों में विशेष अभियान चलाया गया। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। संसद का बजट सत्र आज से शुरू हुआ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने बजट सत्र के पहले दिन लोकसभा में आर्थिक समीक्षा प्रस्तुत की। एक रिपोर्ट।
आर्थिक समीक्षा में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 6.5 से 7% के बीच रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। समीक्षा में कहा गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में सेवा क्षेत्र का उल्लेखनीय योगदान जारी है और वित्त वर्ष 2024 में देश की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का योगदान 55% रहा। आर्थिक समीक्षा बताती है कि 2024 के लिए वैश्विक व्यापार का सकारात्मक माहौल बना रहेगा। समीक्षा में व्यापार और सेवा निर्यात में बढ़ोतरी का अनुमान लगाया गया है। समीक्षा में कहा गया है कि सामान्य वर्षा के पूर्वानुमान और दक्षिण पश्चिम मॉनसून के संतोषजनक प्रसार से कृषि क्षेत्र के प्रदर्शन में सुधार की उम्मीद है। समीक्षा के अनुसार छोटे किसानों की आय बढ़ने से विनिर्माण क्षेत्र के उत्पादों की मांग बढ़ेगी। भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉ वी अनंत नागेश्वरन ने बताया कि अर्थव्यवस्था में वृद्धि की रफ्तार बनी हुई है। उन्होंने बताया कि कृषि क्षेत्र का आने वाले वर्षों में अच्छा प्रदर्शन रहेगा। समीक्षा के अनुसार भारत की सेवाओं के निर्यात में 4.9% की वृद्धि हुई और 2024 में ये 341 अरब अमरीकी डॉलर रहा। सेवाओं के निर्यात में सूचना प्रौद्योगिकी, सॉफ्टवेयर सेवाओं और अन्य व्यापार सेवाओं का प्रमुख योगदान रहा। महंगाई के बारे में आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025 में मुद्रास्फीति की मुख्य दर 4.5% और वित्त वर्ष 2026 में 4.1% रहने का अनुमान व्यक्त किया है। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
वित्त मंत्री कल केंद्रीय बजट पेश करेंगी। दिल्ली के लोक निर्माण विभाग मंत्री आतिशी ने आज उत्तरी पश्चिमी दिल्ली क्षेत्र में रिंग रोड पर सड़क के सुदृढ़ीकरण की परियोजना को मंजूरी दी। इस परियोजना के तहत प्रेमबाड़ी पुल से पंजाबी बाग गोल चक्कर तक 4 किलोमीटर लंबी सड़क का जीर्णोद्धार किया जाएगा। सुश्री आतिशी ने बताया कि ये सड़क रिंग रोड का महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसका उपयोग रोजाना लाखों यात्री करते हैं। उन्होंने सड़क के जल्द से जल्द मजबूत करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। भारी ट्रैफिक के कारण सड़क की ऊपरी सतह पर कई जगह दरार देखी गई थी जिसके बाद सड़क के जीर्णोद्धार करने का निर्णय लिया गया है। आम आदमी पार्टी विधायक सोमनाथ भारती द्वारा भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज पर लोकसभा चुनाव में निर्धारित सीमा से अधिक खर्च करने के आरोप पर भाजपा ने कहा है कि वे खबरों में बने रहने के लिए ऐसे आरोप लगा रहे हैं। दिल्ली भाजपा प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने कहा कि विधायक सोमनाथ भारती द्वारा दायर की गई याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने टिप्पणी की है कि उनकी याचिका में त्रुटि है जिसमें सुधार करने की जरूरत है। श्री कपूर ने कहा कि न्यायालय की इस टिप्पणी से साबित होता है कि विधायक भारती ने तो एक अच्छे जनप्रतिनिधि हैं और न ही एक सक्षम अधिवक्ता है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि दिल्ली में आज केवल एक घंटे की बारिश से ही दिल्ली सरकार की तैयारियों की पोल खुल गई है। उन्होंने कहा कि आज दोपहर हुई बारिश के बाद नजफगढ़ से छतरपुर तक और नरेला से बदरपुर तक क्षेत्रीय की अनाधिकृत कॉलोनियों में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई। इसके अलावा नियमित कॉलोनियों में भी लोगों को जलभराव की समस्या का सामना करना पड़ा। श्री सचदेवा ने कहा कि दिल्ली सरकार की लापरवाही और भ्रष्टाचार के कारण शहर के नालों की सफाई नहीं होती और बारिश आते ही जनता को परेशानी उठानी पड़ती है। दिल्ली नगर निगम महापौर डॉ शैली ओबराय ने आज पूर्वी और पश्चिमी पटेल नगर क्षेत्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र में नागरिक सुविधाओं की समीक्षा की। महापौर ने स्थानीय नागरिकों से अनाधिकृत पार्किंग, कूड़े मलबे के ढेर और अतिक्रमण जैसी विभिन्न समस्याओं पर चर्चा भी की। श्रीमती ओबराय ने निगम अधिकारियों को टैंक रोड पर अनाधिकृत पार्किंग के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अनाधिकृत पार्किंग की वजह से लोगों को आवाजाही में काफी परेशानी होती है। महापौर ने पश्चिमी पटेल नगर में लगने वाले अवैध साप्ताहिक बाजार के विरुद्ध भी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने आज नई दिल्ली के डॉक्टर आम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में सरकारी और गैर सरकारी संगठनों के साथ कुल 72 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। एक रिपोर्ट।
केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार और राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने बताया कि इन समझौता ज्ञापनों का उद्देश्य दिव्यांगजनों के जीवन के साथ ही समाज में व्यापक और सकारात्मक बदलाव लाना है। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना के तहत देश भर में ऐसी कई संस्थाएं हैं जो दिव्यांगों के जीवन को सुगम बनाने वाले कई उपयोगी उपकरणों का कम दामों में निर्माण कर रही हैं। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण और उन्हें रोजगार देने के लिए शासकीय प्रयासों के साथ साथ विभिन्न सामाजिक संगठनों का सहयोग भी बहुत महत्वपूर्ण है। वहीं राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने कहा कि दिव्यांग में अपार क्षमताएं होती हैं, उन्हें बस अवसर की आवश्यकता होती है। उन्होंने कहा कि आज हुए समझौते के तहत विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी संस्थान दिव्यांगों को बेहतर अवसर और मंच देने का कार्य करेंगे। इस समारोह में मंत्रालय के सचिव राजेश अग्रवाल और कई वरिष्ठ अधिकारियों समेत समझौता ज्ञापन करने वाले संगठन के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। प्रादेशिक समाचार के लिए रहीसुद्दीन की रिपोर्ट के साथ सकलैन अख्तर।
नीति आयोग और विश्व बौद्धिक संपदा संगठन ने आज नई दिल्ली में कम विकसित और विकासशील देशों के लिए नवाचार, उद्योग और बौद्धिक संपदा के निर्माण के लिए संयुक्त कार्यक्रम के आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नीति आयोग के अटल नवाचार अभियान और विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के बीच साझेदारी पथ प्रदर्शक है और समान विकास पथ पर चलने वाले देशों के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ नवाचार मॉडल लाएगी। उन्होंने कहा कि दोनों स्कूल स्तर से ऊपर समावेशी और टिकाऊ आर्थिक विकास के लिए बौद्धिक संपदा अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए काम करेंगे। आज श्रावण मास के पहले दिन कांवड़ यात्रा शुरू हो गई। दिल्ली सरकार ने कांवड़ यात्रा के दौरान राजधानी से गुजरने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए शहर में 185 कांवड़ शिविरों की व्यवस्था की है। इन शिविरों में कांवड़ यात्रियों के लिए खाने पीने, स्वास्थ्य जांच, शौचालय और उनके ठहरने जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। दिल्ली के राजस्व मंत्री आतिशी ने बताया कि सभी शिविरों को वाटरप्रूफ टेंटों से तैयार किया जा रहा है ताकि बारिश के दौरान श्रद्धालुओं को कोई असुविधा न हो। उन्होंने कहा कि दिल्ली में कांवड़ियों का आगमन 25 जुलाई के बाद से शुरू होगा और उससे पहले सभी कांवड़ शिविर बनकर तैयार हो जाएंगे।
185 कैंप्स दिल्ली सरकार की तरफ से लगाए जा रहे हैं जो दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में हैं, पर प्रमुखतः जो शहादरा डिस्ट्रिक्ट है उसमें 38, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में 29, सेंट्रल दिल्ली में 22, ईस्ट दिल्ली में 19 और दिल्ली के अलग अलग इलाकों में कई जगह पे कांवड़ शिविर लगाए जा रहे हैं। तकरीबन 15 से 20 लाख ऐसे कांवड़िए दिल्ली के थ्रू होकर जाते हैं और समाज के भी लोग और साथ में सरकार की भी मदद से इनके लिए इंतजाम करते हैं।
सुश्री आतिशी ने लोगों से अपील की कि वे शिविरों की व्यवस्था और श्रद्धालुओं को सुविधा प्रदान करने में सरकार का सहयोग करें। सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में दुकान मालिकों को कांवड़ यात्रा मार्ग पर नाम प्रदर्शित करने के राज्य सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है। न्यायाधीश ऋषिकेश रॉय और एसवीएन भट्टी की पीठ ने मामले की सुनवाई की और राज्य सरकार से शुक्रवार तक जवाब दाखिल करने को कहा। हालांकि पीठ ने यह स्पष्ट किया कि भोजनालयों को परोसे जाने वाले भोजन के प्रकार को प्रदर्शित करना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने 2021 में हुई लखीमपुर खीरी हिंसा के मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को जमानत दे दी है जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई थी। हालांकि न्यायालय ने आशीष मिश्रा की आवाजाही को सिर्फ दिल्ली या लखनऊ तक ही सीमित रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने निचली अदालत को सुनवाई में तेजी लाने और इसका शेड्यूल भी तय करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने मामले में शामिल किसानों को भी जमानत दे दी है और निचली अदालत को अपनी कार्यवाही में तेजी लाने का निर्देश दिया। न्यायालय ने इससे पहले पिछले साल 25 जनवरी को मिश्रा को अंतरिम जमानत दी थी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsoneair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले एक व्यक्ति को अन्ना नगर इलाके से गिरफ्तार किया है। उसके पास से 1 किलोग्राम से अधिक मात्रा में गांजा जब्त किया गया है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार व्यक्ति छोटे छोटे पैकेट बनाकर क्षेत्र में इन मादक पदार्थों की तस्करी करता था। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया है। जामिया मिलिया इस्लामिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग पर 3 सप्ताह के अल्पावधि प्रशिक्षण कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया। कंप्यूटर इंजीनियरिंग विभाग द्वारा आयोजित इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में विद्यार्थियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के क्षेत्र में विस्तृत प्रशिक्षण दिया गया। कंप्यूटर विभाग के प्रमुख और पाठ्यक्रम के संयोजक प्रोफेसर बशीर आलम ने बताया कि देशभर से शिक्षा संस्थानों और उद्योग जगत के 150 से अधिक प्रतिभागियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया, जिसमें 50 घंटे के प्रयोगशाला और अन्य सत्र शामिल थे। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन 1 जुलाई से 19 जुलाई के बीच विश्वविद्यालय परिसर में किया गया। उत्तर रेलवे ने यात्रियों की सुविधा और भीड़भाड़ को कम करने के लिए कई मार्गों पर विशेष रेलगाड़ियां चलाने का निर्णय लिया है। उत्तर रेलवे ने बताया कि मुंबई के बांद्रा और गोरखपुर जंक्शन के बीच चलने वाली रेलगाड़ी संख्या 09043 कल से शुरू होगी और प्रत्येक रविवार और मंगलवार को परिचालित होगी। वापसी में रेलगाड़ी संख्या 09044 24 जुलाई से चलेगी और प्रत्येक सोमवार और बुधवार को परिचालित होगी। वहीं कटिहार से अमृतसर के बीच रेलगाड़ी संख्या 05734 25 जुलाई से चलेगी, जो प्रत्येक बृहस्पतिवार को परिचालित होगी। वापसी में रेलगाड़ी संख्या 05733 27 जुलाई से चलेगी और प्रत्येक शनिवार को संचालित होगी। दिल्ली नगर निगम द्वारा मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए निगम के स्कूलों और शिक्षा संस्थानों में विशेष अभियान चलाया गया। इस दौरान 2370 स्कूलों और शिक्षा संस्थानों की जांच की गई, जिसमें 360 स्थानों पर मच्छरों के प्रजनन का पता चला और उन्हें मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। निगम ने बताया कि उल्लंघन करने वाले 235 संस्थानों को कानूनी नोटिस जारी किए गए हैं और 67 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। निगम ने सभी स्कूलों और शिक्षा संस्थानों से मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम और नियंत्रण के लिए पर्याप्त उपाय करने की सलाह दी है। इसके अलावा आम नागरिकों से भी अपील की है कि वे अपने घर और आसपास पानी जमा न होने दें, ताकि मच्छरों का प्रजनन न हो। दिल्ली के विभिन्न इलाकों में आज तेज बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार सबसे ज्यादा 31.4 मिलीमीटर बारिश सफदरजंग इलाके में दर्ज की गई और लोधी रोड पर 26.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। वहीं बारिश के बाद शहर के कई इलाकों में जलभराव भी देखा गया। बारिश से दिल्ली का मौसम सुहावना बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में आज का अधिकतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री कम 36.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान 29.2 डिग्री सेल्सियस रहा। विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में आंशिक तौर पर बादल छाए रहने और हल्की वर्षा होने की संभावना व्यक्त की है। कल का अधिकतम तापमान 35 और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने संसद में बजट सत्र के पहले दिन लोकसभा में आर्थिक समीक्षा प्रस्तुत की। कल केंद्रीय बजट पेश किया जाएगा। दिल्ली सरकार ने आज उत्तरी पश्चिमी दिल्ली क्षेत्र में रिंग रोड पर सड़क के सुदृढ़ीकरण की परियोजना को मंजूरी दी। दिल्ली सरकार ने कांवड़ यात्रा की सुविधा के लिए 185 कांवड़ शिविरों की व्यवस्था की और दिल्ली नगर निगम द्वारा मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए स्कूलों और शिक्षा संस्थानों में विशेष अभियान चलाया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।